नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को शालीमार मैदान में होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुंग ने हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने का श्रेय हरियाणा वासियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की महासचिव कुमारी सैलजा ने कहा कि आलाकमान द्वारा हार के कारणों की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन टिकाऊ और लचीले बिजली क्षेत्र के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक चुनौती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड-19 वैक्सीन के कारण रक्त के थक्के जमने जैसे दुष्प्रभावों के आरोप वाली याचिका खारिज की और हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने उग्र अपराध नियंत्रण एवं नागरिक सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों को हथियार संचालन का उन्नत प्रशिक्षण देने पर जोर दिया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को पंचकूला के सेक्टर 5 स्थित शालीमार मैदान में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। समारोह की तैयारियों को लेकर पूर्व सांसद व समारोह के कार्यक्रम प्रभारी संजय भाटिया ने बताया कि प्रधानमंत्री के पंचकूला आगमन को लेकर बहुत से उत्साह व खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा कि लोगों के उत्साह को देखते हुए शपथ ग्रहण स्थल बदला गया है। इस अवसर पर मौजूद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का श्रेय हरियाणा वासियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को दिया।
सरकार आने के पीछे हरियाणा की जनता का आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री मोदी जी के गरीबों के लिए किए गए 10 वर्षों के काम है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अन्नदाता, किसान, युवा, महिला और गरीब के लिए जो नीतियां बनाई हैं, आज उसका कहीं मैच नहीं है। प्रधानमंत्री की हर योजना आखिरी व्यक्ति तक पहुंची है। लाखों लोगों को घर मिले हैं, देश के अंदर 4 करोड़ घर मिले हैं। ये जनता का आशीर्वाद है जो वोट के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी को केंद्र की सरकार बनाने के लिए मिला और हरियाणा में सरकार बनाने के लिए मिला है।
श्री चुंग ने शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर कहा,
मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण कार्यक्रम 17 तारीख को यहाँ होने वाला है। पार्टी की, प्रदेश की सीनियर लीडरशिप यहाँ पर सारे तैयारी चल रही है।
वहीं श्री संजय भाटिया ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गृहमंत्री अमित शाह पर्यवेक्षक के नाते 16 अक्टूबर को हरियाणा आ रहे हैं। उनके अतिरिक्त राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राज्यों के सभी मुख्यमंत्री व कई गणमान्य व्यक्ति भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुरक्षा प्रबंध देख रहे हरियाणा के महानिरीक्षक व पुलिस आयुक्त शिवास कविराज ने आकाशवाणी समाचार को बताया,
हमारा हेडक्वार्टर भी है और इसीलिए जो है चंडीगढ़ से लगा हुआ है, इसीलिए सिक्योरिटी के भी जो है सारे पुख्ता इंतजाम रहेंगे, सारे टीम्स भी रहेंगे और सारे ऑपरेशन जो है।
अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की महासचिव व सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार न बनने के कारणों का आला कमान देख रहे हैं। आज मीडिया से बातचीत में कुमारी सैलजा ने कहा कि सरकार बनने की पूरी उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि हार के कारणों की समीक्षा जारी है। ईवीएम बारे मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से ये मामला चुनाव आयोग के समक्ष उठाया गया है। प्रदेश संगठन में बदलाव बारे पूछे एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि ये आला कमान के अधिकार क्षेत्र का मामला है। राहुल गांधी द्वारा कांग्रेस की बैठक में हार का कारण आपसी फूट बताए जाने पर उन्होंने कहा कि अनकही बातें हैं, राहुल गांधी की ओर से ऐसा कोई बयान नहीं आया है। संगठन न होने बारे एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि संगठन होना जरूरी है क्योंकि संगठन कार्यकर्ताओं की पहचान है जो पिछले 10-12 सालों से नहीं था। उन्होंने कहा कि हार से कार्यकर्ता निराश जरूर हैं पर हताश नहीं है। अब तथ्य जांच समिति कार्यकर्ताओं के बीच जाकर हार के कारणों की तलाश करेगी, इसके बाद रिपोर्ट आला कमान को सौंपी जाएगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन टिकाऊ और लचीले बिजली क्षेत्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक चुनौती है। दिल्ली में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विचार विमर्श सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को अपनी बढ़ती बिजली मांग को पूरा करते हुए वर्ष 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को लगभग 1 लाख टन कम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त कर सकता है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज दिल्ली में माइग्रेट V2 वेब पोर्टल का शुभारंभ किया और मोबाइल ऐप जारी की। इस पोर्टल पर 2,81,000 पंजीकृत विदेशी नियोक्ता हैं। ये पोर्टल प्रवासी भारतीयों के लिए सुरक्षित और वैध नियुक्ति का मार्ग सुनिश्चित करेगा। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि माइग्रेट B2 वेब पोर्टल का शुभारंभ भारतीयों के लिए सुरक्षित पारदर्शी और समावेशी गतिशीलता सृजित करने के सरकार के प्रयासों का एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल का नया संस्करण विदेश में भारतीय कामगारों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के प्रति सरकार की वचनबद्धता को दर्शाता है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज COVID-19 वैक्सीन के कारण रक्त के थक्के जमने जैसे दुष्प्रभावों के आरोप वाली याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि जनहित याचिका केवल सनसनी फैलाने के लिए दायर की गई थी। एक अन्य मामले में शीर्ष अदालत ने गैर सरकारी संगठन की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र को दूरदर्शन पर 24 घंटे का सिंधी भाषा का चैनल शुरू करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। इससे पहले गैर सरकारी संगठन सिंधी संगत की इस याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भी खारिज कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाषा को संरक्षित करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं। हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने उग्र अपराध नियंत्रण व नागरिक सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों को हथियार संचालन का उन्नत प्रशिक्षण देने पर जोर दिया है। वो आज उग्र अपराध नियंत्रण तथा हरियाणा पुलिस में क्षमता निर्माण को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर के पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस आयुक्तों तथा पुलिस अधीक्षकों की बैठक ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले एजेंटों पर कार्रवाई करने तथा नशा मुक्ति को लेकर जिलों में किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की। पुलिस महानिदेशक ने पुलिस अधिकारियों को अपने जिलों में तैनात युवा पुलिसकर्मियों का चयन, उन्हें शस्त्र चलाने का 7 से 10 दिन का उन्नत प्रशिक्षण दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय से भी एक पाठ्यक्रम तैयार करके जिलों में भिजवाया गया है, उन्हें व्यवहार कुशलता का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उन्होंने पुलिस अधीक्षकों को 21 अक्टूबर से प्रशिक्षण शुरू करने और प्रशिक्षण के लिए बेहतरीन प्रशिक्षकों का चुनाव करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण करवाने के लिए हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन तथा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र सुनारिया का भी चयन किया गया है। पुलिस महानिदेशक ने पुलिस अधीक्षकों को क्षमता निर्माण के लिए अच्छे से अच्छा हथियार और उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। श्री कपूर ने अधिकारियों को विदेश भेजने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करने वाले लोगों पर शिकंजा कसने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। महानिदेशक ने ऐसे एजेंटों के गठबंधन को तोड़ने के लिए प्राथमिकता के आधार पर और गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस अधीक्षकों को ऐसे मामलों की जांच की निगरानी स्वयं करने को कहा। श्री कपूर ने कहा कि नए कानून के तहत ऐसे लोगों की संपत्ति जब्त की जा सकती है। उन्होंने पुलिस अधीक्षकों से 31 दिसंबर तक अपने अपने जिलों के गांवों तथा वार्डों को नशा मुक्त बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए। केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लगभग 732 उत्पादों के लिए 150 से अधिक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अधिसूचित किए गए हैं। नई दिल्ली में विश्व मानक दिवस कार्यक्रम के अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानकों के कार्यान्वयन को सरकार द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को शालीमार मैदान में होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने का श्रेय हरियाणावासियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की महासचिव कुमारी सैलजा ने कहा कि आला कमान द्वारा हार के कारणों की समीक्षा की जा रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।